जनमा जनमा मोह दीजियो श्री वृंदावनवा राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सोते रो आधी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तिरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन जानी
जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सभी लोग प्रेम से
हरे राम हरे राम राम राम, हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद वदना कर नंदा भजुर मन गोविंदा, आशाम सुंदर मुख चंदा भजुर मन गोविंदा, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं कृष्ण बड़े हैं। जैसे तारों में चंदा भजुर मन गोविंदा, नागर नंदा भजुर मन गोविंदा, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है राधा जी बड़ी है। जैसे नदियों में गंगा भजुर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजुर मन गोविंदा। हर सुर यवर पर यतियन कर नटवर मन हर भैर मन हर मन हर मटक घटक तट निकट मुकट शिर सवर नमय रण रण पट भरण भरण पद डूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीज रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीज रंग भर तब पियु पियु शब्द पुकारत जाता पियु मोहिन कंठिरा तब गड़ड़ गड़ड़ नभ हो तड़ाकन घन गिरिवर शिखर बजे रण रण पट खरड़ खरड़ पद डूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जिजि रंग भर सुंदर जिजि रंग भर सुंदर श्याम की सब बाला रूप रसाला करिबे हला नंद लाला नगी तन जाला विपस जाला दिन दयाला नंद लाला आये नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसी वाला बनवारी नर सुतारी मित्र मुरारी गए विसारी गिरधारी रे धारी रे जीजी गए विसारी गिरधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गुर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य हाँ हरि बोल हरि हरि बोल 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य जय जय प्रभुपाद 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 जय
श्री राधा गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की शिशि गौर निताय की श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रमाणंद ॐ नमो भगवते आज हम श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर प्रवचन सुनेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक हैं। इस 18 अध्याय में से चतुर्थ अध्याय का यह अष्टम श्लोक है। आप सब मेरे पीछे दोहराइए। बहुत जगत विख्यात श्लोक है, सब लोग इस श्लोक को जानते हैं, परंतु आज हम मानेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि है, नी नहीं है, संभवामि युगे युगे संभवानी संभवामि युगे युगे ये साबित करता है कि गीता किसी ने खोला नहीं है। बीआर चोपड़ा का महाभारत देखकर याद किया है। परित्राणाय उद्धार, बोलिए उद्धार शब्द का अर्थ बता रहा हूं मैं। परित्राणाय का अर्थ होता है उद्धार। साधुनाम भक्तों के विनाशाय संहार के लिए च और दुष्कृताम् दुष्टों के धर्म धर्म की संस्थापन अर्थाय पुनः स्थापना करने के लिए संभवामि मैं प्रकट होता हूँ युगे युगे प्रत्येक युग में। अनुवाद गुजराती में है। भक्तों नो उद्धार करवा अने दुष्टों नो विनाश करवा तथा धर्मना सिद्धांतों नी पुनः स्थापना करवा माटे हूँ स्वयं दरेक युग मा प्रकट थाउ छू। अनुवाद हिंदी में भक्तों का उद्धार करने के लिए दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं स्वयं प्रत्येक युग में अवतार धारण करता हूँ या प्रकट होता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदेशाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस चतुर्थ अध्याय के अष्टम श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन इस संसार में मैं तीन कारण से प्रकट होता हूं अवतार लेता हूं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने के तीन कारण बता रहे हैं। कहते हैं परित्राणाय साधुना साधुओं का परित्राण करने के लिए साधुओं की रक्षा करने के लिए मैं अवतरित होता हूं। विनाशाय च दुष्कृता दुष्कृति अर्थात पापियों का असुरों का विनाश करने के लिए मैं प्रकट होता हूं और धर्म संस्थापनार्थाय और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूं या अवतार धारण करता हूं। भक्तों भगवान श्री कृष्ण की इस संसार के जीव पर बहुत कृपा रही है। भगवान बहुत कृपालु है और भगवान की कृपा को गिनना शेष करना हम जैसे बद्ध जीवों के बस की बात नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं कोटिन मुख कही जात प्रभु के एक एक उपकार। भगवान श्री कृष्ण के इस जीव पर जितने उपकार है यदि करोड़ मुख भी किसी को मिल जाए फिर भी भगवान का एक एक उपकार को नहीं गिना सकता है। चाहे मानो या न मानो भगवान का जीव पर बहुत कृपा है बहुत अनुकंपा है। एक बालक अपने माता पिता अपने बालक पर कितना प्रेम करते हैं कितनी कृपा करते हैं हो सकता है बालक इस बात को नहीं जानता है। अज्ञान के कारण बालक अपने माता पिता की कृपा को नहीं जानता है नहीं समझ सकता है। परंतु माँ और पिता का हृदय ही जानता है कि इस बालक के ऊपर वे कितनी कृपा करते हैं। अपने बालक को सबसे अच्छा भोजन देते हैं, सबसे अच्छी जगह पर रखते हैं, सबसे अच्छा कपड़ा देते हैं, सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। तो भगवान भी हम जीवों के माता पिता हैं। गति भरतार प्रभु साक्षी, कहते हैं कृष्ण ही सबके पिता है। तो इस संसार का साधारण पिता भी अपने पुत्र की रक्षा करता है, उनके ऊपर कृपा रखता है। तो पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण अपने इस बालकों के ऊपर, अपने जीवों के ऊपर क्या कृपा नहीं रखते होंगे? अवश्य रखते हैं। बहुत बहुत कृपा है भगवान की, और भगवान की कृपा हमें तब पता चलती है जब वे अवतार लेते हैं। तो भगवान इस संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए, हम जब ट्रेन से आ रहे थे तो हिसाब लगा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण जीवों के ऊपर इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि ब्रह्मा जी के एक जीवन में भगवान 3,62,62,000 बार अपने धाम से यहां आते हैं ब्रह्मा जी के एक जीवन में। भगवान के अनंत अनंत अवतार हैं, पर क्यों आते हैं भगवान इस पृथ्वी पर, क्यों आते हैं, ये श्लोक में बताया गया है। तो प्रश्न होता है, हमें भी प्रश्न होता है कि भगवान क्यों आते होंगे। तो हमारे प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवत गीता में अर्जुन के माध्यम से कहते हैं, तीन कारण बताते हैं। कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापन अर्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। वास्तव में जब भगवान इस संसार को बनाते हैं, इस संसार का जब निर्माण हुआ, तो संसार के निर्माण के साथ ही भगवान ने धर्म का निर्माण किया, क्योंकि धर्म के बिना इस संसार में कोई भी जीव रह नहीं सकता है। और बिना धर्म के यदि मनुष्य रहता है तो वो मनुष्य मनुष्य नहीं माना जाता है, वो पशु माना जाता है। धर्मेन विहीन, धर्म से विहीन व्यक्ति पशु भेद समान, वे पशु के समान है। तो कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। यदि बुद्धि से विचार किया जाए तो भगवान का यह कारण बिल्कुल गौण है, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो उसे धर्म की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान साक्षात धर्म है, वे जब आ जाते हैं तो बिना कुछ किए वह धर्म की स्थापना हो ही जाती है। बहुत सूक्ष्म विषय है आज का, सब लोग अपनी बुद्धि लगाकर समझिएगा इस बात को। भगवान ने कहा कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान यहां पर आएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, प्रभुपाद जी की तरह प्रचार करेंगे। नहीं नहीं, भगवान आते हैं यहां पर, कुछ देर तक रहते हैं तो धर्म की स्थापना ऑटोमेटिक हो जाती है। अब भगवान श्री रामचंद्र आए, कुछ साल तक रहे, चले गए, धर्म की स्थापना हो गई, स्पेशली उसे कुछ करना नहीं पड़ा। आए अपने माता पिता के साथ रहे, वनवास में गए, तो वनवास में गए तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, तो इस संसार में धर्म की स्थापना हो गई। क्या स्थापन हुआ? कि एक व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान आते हैं तो धर्म की स्थापना ऑटोमेटिक हो जाती है। तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आते हैं। भगवान का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना करना नहीं है। तो क्या भगवान का उद्देश्य असुरों का विनाश करना है? विनाशाय च दुष्कृताम, जो दूसरा कारण बताया, भगवान इस संसार में आते हैं तो दुष्टों का विनाश करने के लिए भी नहीं आते हैं। इस संसार में व्यक्ति कैसे भी क्यों ना हो, वो है तो भगवान के ही अंश। सभी जीव हैं और जीव आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे एक पिता के पांच पुत्र हैं, उनमें से एक अंधा है, एक लंगड़ा है, एक बहरा है और दो अच्छे हैं, तो क्या पिता का अलग अलग पुत्रों के प्रति अलग अलग प्रेम होता है? पुत्र कैसा भी क्यों न हो, पिता का पांचों पुत्र के प्रति समान प्रेम होता है। और गीता में भी भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, इस संसार में रहने वाले सभी जीवों के लिए मैं सम हूं। चाहे वो दुष्ट हो, चाहे अच्छा हो, चाहे पापी हो, अधर्मी हो, सबके समान। सब मम प्रिय मम सब उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सब लोग मेरे प्रिय हैं, मैं सबको प्रेम करता हूं। यहां तक जो भगवान को गाली भी देते हैं उसे भी भगवान प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं। भगवान सबको प्रेम करते हैं। इस संसार के सभी जीव भगवान के अंश हैं। तो सभी जीव भगवान के अंश हैं, तो भगवान अपने जीव को मारने के लिए आएंगे? एक पिता अपने पुत्र को कभी मार सकता है? नहीं नहीं, भगवान जीवों को मारने के लिए नहीं आते हैं। भगवान का वास्तविक उद्देश्य इस संसार में आने का परित्राणाय साधु नाम, अपने साधु अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। जैसे यहां पर कथा हुई थी पिछले दिनों, याद कीजिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की कितनी रक्षा की। महारानी कुंती की प्रार्थना थी, महारानी कुंती के जीवन में भगवान ने कितनी रक्षा की। महारानी कुंती अपनी प्रार्थना में गिना गिना कर थक गई कि प्रभु आपके एक एक उपकार मुझ पर है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाथ असत सभाया मनवास कृचन मृदे मृदे नेक महारथाश्रे द्रोणस्य तच्चाश्म हरे विरक्षिता। भगवान का इस संसार में आने का वास्तविक उद्देश्य यदि कोई है तो वो है अपने भक्तों की रक्षा करना। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इस संसार में आते हैं। और अपने भक्तों की रक्षा करने में यदि कोई मर जाता है तो वे मर जाए। देखिए भगवान का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी को मारना। भगवान का उद्देश्य है अपने भक्तों की रक्षा करना। और भक्तों की रक्षा करने में यदि कोई झपट में आ गया तो मर गया। भगवान स्पेशली किसी को मारना नहीं चाहते हैं। आप कथा के द्वारा समझिए, भागवत के अष्टम स्कंध में अम्बरीश महाराज की कथा आती है। कुछ दिन के बाद वह कथा हम यहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं। अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज का अपराध किया। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज जो भगवान के परम भक्त थे उसे मारने के लिए कृत्या उत्पन्न की, एक राक्षसी को प्रकट किया कि अम्बरीश को मार डालो। तो भगवान ने अम्बरीश महाराज को बचाने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और सुदर्शन चक्र से कृत्या नष्ट हो गई। फिर वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे लगा। तो भगवान का उस चक्र चलाने का वास्तविक उद्देश्य दुर्वासा को मारना नहीं था। भगवान का वास्तविक उद्देश्य अम्बरीश महाराज को बचाने का था। तो भगवान का वास्तविक उद्देश्य परित्राणाय साधुना, अपने भक्तों की रक्षा करना है। और इस संसार में जो लोग भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं, भगवान के भक्त के जो शत्रु बनते हैं, तो वे भगवान के भी शत्रु हो जाते हैं। एक पिता के पांच पुत्र होते हैं, पांचों पुत्र पिता के सेवा परायण होते हैं, परंतु उनमें से दो पुत्र यदि तीन पुत्रों को बिना कारण बिना वजह मारने लगे पीटने लगे तो पिता देखते रहेंगे? नहीं वह दो तीन पुत्र की रक्षा करेंगे। और तीन पुत्र की रक्षा करने के लिए उस दो को थप्पड़ भी मारनी पड़ी तो मार देंगे, क्योंकि वे पिता है। तो पिता अपने भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपना अपने भक्त की रक्षा करते हैं। उसमें कोई मर जाता है तो फिर वो उनका गुनाह। तो इस प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं। अब भक्तों की रक्षा का अर्थ क्या होता है? परित्राणाय साधु नाम यहां पर आया है, तो साधु का अर्थ क्या होता है? साधु का अर्थ भगवान भगवत गीता में देते हैं कि अपि चेत सु दुराचारो। कोई कितना भी दुराचारी क्यों न हो, कितना भी मांस खाता हो, कितना भी सिगरेट पीता हो, शराब पीता हो, तंबाकू खाता हो, अपि चेत सु दुराचारो, दुराचारी नहीं सु दुराचारी, कोई कितना भी पापी क्यों न हो, भजन्ते माम अनन्य भाग, कितना भी पापी व्यक्ति ज्ञान होने के बाद कथा सुनने के बाद भजन्ते माम, यदि मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, तो हे अर्जुन साधु रेवस मंतव्य, तो उसे साधु समझना, वे साधु है। सम्यक व्यवस्थितो ही सर, कितना भी दुराचारी पापी व्यक्ति यदि भक्ति करने लगता है तो वह पापी नहीं रहता है, वह साधु कहलाता है, साधु बन जाता है। होता है संसार में कुछ लोग भक्ति में लगते हैं, कंठी और तिलक करते हैं, परंतु समाज के लोग कहते हैं ये कल तो हमारे सामने शराब पी रहा था, आज देखो कितना नाटक कर रहा है। माताओं में भी ऐसा होता होगा कि ये कल तो इतना खा रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, आज देखो बड़ी भक्तानी बन गई है, दस दस बजे तक घर पर नहीं आती है, ऐसा कहते होंगे लोग। परंतु भगवान कहते हैं कि ऐसा किसी को भी नहीं कहना चाहिए। अपि चेत सु दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग, यदि कोई मेरी भक्ति करता है तो साधु, वे साधु है। और साधु को यदि कोई कुछ भी करता है तो भगवान नहीं रह सकते हैं। एक बार भगवान को गाली दे दोगे भगवान सहन कर लेंगे, परंतु भगवान के भक्त को कुछ किया तो फिर उनके शत्रु भगवान हो जाते हैं। आपने देखा महाभारत में भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए और बहुत सुंदर प्रस्ताव रखा कि पांडवों को 5 गांव दे दो और आप पूरे भारत को, पूरी दुनिया को रखो। परंतु दुर्योधन नहीं माना, क्योंकि दुर्योधन पांडवों का शत्रु था। दुर्योधन ने कृष्ण कहा छोड़ो भी, पांडव तो हारते रहेंगे, मरते रहेंगे, हमने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, आप 56 भोग खाओ। महाभारत में वर्णन है, उस समय भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं द्विशत अन्नम न भोक्तव्यम, द्विशत अन्नम नैव भोजये, पांडवान द्विशस्य राजन मम प्राणाय पांडवा। दुष्टों के घर पर मैं भोजन नहीं करता हूं। तुम दुष्ट हो क्यों? क्योंकि पांडव मेरे प्राण के समान है। क्यों? क्योंकि वे मेरी भक्ति करते हैं। तुमने पांडवों के साथ वैर नहीं किया है, पांडवों के साथ शत्रुता नहीं की है, तुमने मेरे प्राण के साथ शत्रुता की है, मेरे प्राण के साथ वैर किया है। इसलिए यस्वान द्वेष्टि समाम द्वेष्टि, यस्सा ननु समाम ननु, इसलिए मैं तुम्हारे घर कभी भी भोजन नहीं करूंगा। और प्रकट है भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के 56 भोग नहीं खाए, विदुर जी के घर पे जाकर केले के छिलके खाए। भगवान 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 प्रेम के भूखे हैं, भोग के भूखे नहीं है। भगवान के घर पर ऐसा नहीं है कि कुछ मिष्ठान नहीं बनता होगा, वहां पर धन नहीं होंगे, सब कुछ है। भाव रही जनार्दन, भगवान को प्रेम चाहिए। तो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और जो भगवान से प्रेम करते हैं वे भगवान के प्राण बन जाते हैं। भगवान के भक्तों से वैर करना इसका अर्थ है भगवान के प्राण से वैर करना। भक्तों से यदि किसी ने वैर किया तो उसे भगवान भक्त छोड़ देंगे। भक्त एक बार माफ भी कर देते, चलो हो गया सो हो गया, परंतु भगवान उसे क्षमा नहीं करते। हरि रुष्टेन कश्चन यदि हरि रुठ जाए गुरु रुष्टेन कश्चन, परंतु भगवान के भक्तों को दुखी करने पर भगवान नहीं रह सकते हैं। तो भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। तो भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए यहां क्यों आ जाते हैं स्वयं? क्या अपने धाम में बैठकर रक्षा नहीं कर सकते? जो भगवान अपने धाम में बैठकर इस संसार का सर्जन कर सकते हैं, इस संसार को चला सकते हैं, प्रलय कर सकते हैं, तो वह भगवान अपने धाम में बैठकर साधुओं की रक्षा नहीं कर सकते हैं? दुष्टों का विनाश अपनी इच्छा शक्ति से, अपने आंख के इशारे से इस ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं, तो इस ब्रह्मांड में रहने वाले एक रावण और कंस को नहीं मार सकते हैं अपने धाम में बैठकर? मार सकते हैं, परंतु फिर भी भगवान यहां पर आते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। मैंने कथा सुनाई थी, कुछ लोगों को याद होगा। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम्हारे भगवान इस संसार में अवतार क्यों लेते हैं? वे स्वयं क्यों आते हैं? वे तो अपने धाम में बैठकर भी सब कुछ कर सकते हैं, वे आज आते हैं क्यों? तब बीरबल ने कहा कि कुछ दिनों के बाद मैं आपको उत्तर दूंगा। 10-15 दिन के बाद अकबर, बीरबल और अकबर का एक छोटा सा लड़का था, बीरबल ने उसे गोद में लिया था और अकबर के कुछ सैनिक नाव में सवार होकर कहीं जा रहे थे। तो बीच नाव में जब बीच नदी में जब वह नाव पहुंची तो बीरबल के हाथों में जो अकबर का छोटा सा लड़का था जानबूझकर नदी में डाल दिया, गिरा दिया। जैसे ही बीरबल के हाथ से वह बच्चा नदी में गिरा तो जितने भी सैनिक थे सब लोग तैयार हो गए नदी में कूदने के लिए, उसको बचाने के लिए। एक साथ 100 सैनिक तैयार हो गए, परंतु अकबर ने देखा कि ये लोग उसे बचा लेंगे, उस बालक को बचा लेंगे, फिर भी अकबर स्वयं उस नदी में जंप लगाया और स्वयं उस नदी में तैरकर बिल्कुल नीचे जाकर अपने पुत्र को निकालकर वो बाहर आया। तब बीरबल ने अकबर को इतना ही पूछा कि हे राजन, यहां पर आपके बालक को बचाने वाले 100 सैनिक थे और उनमें से 10-15 तो स्पेशल बचाने के लिए ही साथ में रहते हैं। ये सब लोग आपके बालक को बचाने के लिए खड़े थे, फिर भी आप क्यों गिरे? फिर भी आप क्यों गए? तब अकबर ने इतना ही कहा कि मैं कैसे खड़ा रहता, मेरा बालक है, मेरा बालक है, मेरा बालक पानी में गिर जाए और मैं यहां पर खड़ा रहूं? मैं उसे इतना प्रेम करता हूं कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं नदी में कूद पड़ा। तो भगवान का भी जीवों के साथ इतना ही प्रेम है। इस संसार में जब दुष्ट असुर भगवान के भक्तों को सताते हैं तब भगवान अपने धाम में बैठकर दुष्टों को मार सकते हैं, परंतु अपने भक्तों का दुख देखकर भगवान रह नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान अपने धाम से उतरकर इस भौतिक जगत में आते हैं। परित्राणाय साधुना, साधुओं की रक्षा करने के लिए। तो वास्तव में साधुओं की रक्षा करने का अर्थ क्या होता है? साधुओं की रक्षा करने के लिए अर्थात 500 रुपये देने के लिए, 1,000-2,000 रुपए देने के लिए भगवान आते हैं। साधुओं की दो ही इच्छा होती है, एक इष्ट प्रापण और एक अनिष्ट निवारण। साधुओं की दो इच्छा होती है, इष्ट प्रापण का अर्थ है कृष्ण हमें मिल जाए, कृष्ण हमें प्राप्त हो जाए। ये इच्छा होती है भक्तों की कि कृष्ण से मिलना है, कृष्ण हमें मिलने चाहिए, ये इच्छा है। और भक्त की दूसरी इच्छा क्या होती है? कृष्ण को प्राप्त करने में जो कार्य कर रहे हैं अर्थात भक्ति, उसमें जो बाधा आती है वे नष्ट हो जाए। भक्त की दो ही इच्छा होती है, एक भगवान मिल जाए और भगवान मिलने में जो बाधा आती है वो समाप्त हो जाए। ये दो इच्छा के अलावा भक्त की तीसरी इच्छा नहीं होती। कुछ लोग भगवान से धन चाहते हैं, कुछ लोग गाड़ी बंगला इत्यादि चाहते हैं, ये भी ठीक है। ये सब की इच्छा हो तो कृष्ण से मांगना चाहिए, परंतु ऐसे भक्त को शुद्ध भक्त नहीं कहा जाता है, निष्काम भक्त नहीं कहा जाता है। शुद्ध भक्ति का अर्थ है निष्काम, अनन्य अर्थात न अन्य, कृष्ण के सिवा अन्य कोई नहीं, कृष्ण ही चाहिए। जैसे वृत्रासुर भागवत के छठे स्कंद में एक असुर भगवान से प्रार्थना करता है, वास्तव में वह असुर नहीं, भगवान का महान महाभागवत और शुद्ध भक्त है। भगवान से कहता है न नाक पृष्ठम न च पार मेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्ये न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहीय कांक्षी। हे कृष्ण, मुझे इस संसार का राजा नहीं बनना है, इस पृथ्वी का राजा नहीं बनना है, न तो मुझे स्वर्ग का राजा बनना है, न तो मुझे ब्रह्मलोक का राजा बनना है, मुझे कुछ धन संपत्ति न धनम न जनम न सुंदरी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एकमात्र आपकी भक्ति चाहिए। जन्म जन्मांतर तक कृष्ण आपसे प्रेम करता रहूं, आपकी भक्ति करता रहूं, यह चाहिए। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तनम यथावत सदा शुद्ध आता प्रियम प्रिया विशितम विषण्णा मनो अरविंदाक्ष दीक्षते त्वा। कहते हैं वृत्रासुर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु प्रभु आपको प्राप्त करने के लिए मेरा मन जिस प्रकार से पक्षी का छोटा सा बच्चा जिसकी पंख नहीं निकली है और वे स्वयं भोजन नहीं जुटा सकता है, तो उनकी माँ और पिता भोजन जुटाने के लिए जंगल में जाते हैं और जंगल से आने में थोड़ी भी देर हो जाती है, यह बच्चा भूखा होता है तो चेंचे करता रहता है। तो प्रभु जैसे वह पक्षी का छोटा सा बच्चा उसके माता पिता की राह देखकर चिल्लाता है, रोता रहता है, वह पक्षी का छोटा सा भूखा हुआ बच्चा जैसे अपनी माता और पिता की राह देखता है, वैसे प्रभु मैं आपके दर्शन की राह देख रहा हूं। जैसे गाय का ताजा बछड़ा अपनी गाय अपनी माँ के अलावा किसी का दूध नहीं पीता है, और गाय जब चरने के लिए जाती है और यहाँ बछड़ा जब भूखा होता है शुद्ध आर्ता और गाय के दूध को पीने के लिए बहुत दुखी होता है क्योंकि गाय जंगल में गई है, तो जैसे बछड़ा जैसे भूखा बछड़ा अपनी माँ गाय को प्राप्त करने के लिए राह देखता रहता है, वैसे ही प्रभु मैं आपकी राह देखकर बैठा हूं, मेरा मन आपको प्राप्त करने के लिए लोलुप है। और तीसरा दृष्टांत देते हैं कि जैसे किसी पतिव्रता पत्नी का पति परदेश गया हो और यहाँ पर उस पत्नी को बहुत परेशान किया जाए, बहुत दुखी किया जाए, तो जैसे वो पत्नी अपने परदेश गए हुए पति की राह देखती हैं कि कब वे आएंगे और मेरे दुख को दूर करेंगे, वैसे प्रभु मैं आपकी राह देख रहा हूं कि कब आप मुझे दर्शन देंगे। मृत्यु के अंतिम समय में वृत्रासुर भगवान से प्रार्थना करते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की बहुत सुंदर प्रार्थना है कि प्रभु हृदय से जब प्राण निकल जाए, तन से जब यह प्राण निकले तो इतना ही करना, क्या कि गंगा जी का तट निकट हो और ये सब कुछ हो या न हो परंतु मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण आप मेरे करीब खड़े रहना, आपको देखते देखते मैं मेरा प्राण छोड़ना चाहता हूँ। पितामह भीष्म ने इसी प्रकार से प्रार्थना करके अपना प्राण छोड़ा। भगवान के भक्त की यही प्रार्थना होती है कि प्रभु आपको देखते देखते आपका नाम लेते लेते ये जीवन निकल जाए, ये प्राण छूट जाए, एकमात्र भक्त की यही इच्छा। तो भगवान के भक्त की इच्छा उनको प्राप्त करने की होती है और भगवान को प्राप्त करने में जो बाधा आती है उस बाधा को मिटाने की होती है। तो इस प्रकार से भगवान वास्तव में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इस संसार में कब कब आते हैं? युगे युगे। क्या श्लोक था? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान युगे युगे अर्थात प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं, अवतार धारण करते हैं। युग का अर्थ आप सब लोग जानते होंगे, जैसे वर्तमान में हम जिस युग में हैं इसे कलयुग कहा जाता है। तो ऐसे चार युग हैं, ये कलयुग चल रहा है और इसके पहले द्वापर युग, द्वापर युग से पहले त्रेता युग और त्रेता युग से पहले सतयुग। तो चार युग होते हैं, ये चारों युगों में भगवान अवतार लेते हैं, एक युग में एक बार, दूसरे युग में दूसरी बार। वैसे तो भगवान बहुत बहुत अवतार लेते हैं अपने भक्तों के जीवन में, तो प्रतिदिन दर्शन देते हैं, ये भी एक अवतार है। परंतु इस श्लोक में जो तीन कारण बताए हैं, इस तीनों कारण को पूर्ण करने के लिए जिसे युगा अवतार कहा जाता है, वे प्रत्येक युग में एक बार भगवान अवतार लेते हैं। और ये शास्त्र में बिल्कुल फिक्स किया गया है कि सतयुग में अवतार लेने वाले भगवान कैसे होते हैं, कौन सा रंग होता है उनके शरीर का। त्रेता युग में भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनका रंग कैसा होता है, द्वापर में और कलयुग में अवतार लेते हैं तो उनका रंग कैसा होता है, बिल्कुल शास्त्र में लिखा हुआ है। शास्त्र में लिखा है कि सतयुग में जो भगवान अवतार लेते हैं उनका रंग श्वेत रंग, सफेद रंग के होते हैं। सतयुग में भगवान का अवतार सफेद रंग का होता है, त्रेता युग में भगवान का अवतार रक्त वर्ण का होता है, लाल रंग का। द्वापर युग में भगवान का अवतार शुक पत्राभ अर्थात तोते के पंख के समान, अर्थात
कौन सा कलर
पोपटी को कौन सा कहते हैं? ग्रीन तो इंग्लिश हुआ, हरा हरा। तोते का रंग हरा होता है, हरा भी एग्जैक्ट नहीं है। हरे कृष्णा चाहे मुझे बोलने को आए या ना आए, लेकिन आप सब लोग समझ गए होंगे, सब लोग समझदार हैं। यदि मैं महाराष्ट्र का राजा होता तो सबको किसी को बोरीवली का राजा बना दिया होता, किसी को दहीसर का। तो आपको याद है सतयुग में भगवान का जो अवतार होता है उनका रंग कौन सा होता है? सफेद श्वेत रंग। त्रेता युग में भगवान का अवतार कौन से रंग का होता है? रक्त अर्थात लाल रंग का। बहुत बुद्धिमान है सब लोग, रमीला माता जी ने बुद्धिमान लोगों को ही एकत्रित किया है। और वास्तव में जो बुद्धिमान है वही दरवाजे के अंदर, दरवाजे के बाहर भी बैठ सकते हैं, नहीं तो बाहर वाले नाराज हो जाएंगे कि हमें नहीं गिना। अर्थात बुद्धिमान जो है वही इस कथा में आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ बाजू में भी रहने वाले बहुत लोग हैं। क्यों नहीं है? कि बुद्धि नहीं है। बुद्धि से व्यक्ति विचार करता है कि नहीं यहाँ कुछ है, भले जीवन में स्वीकार करे न करे वे अपने स्वतंत्रता की बात है, परंतु यहाँ गीता और भागवत के ऊपर कुछ शुद्ध चीज हो रही है। तो सतयुग में सफेद, द्वापर त्रेता में लाल और द्वापर युग में ठीक है हरा कहो या पोपटी कहो, हरा रंग होता है। और कलयुग में श्याम वर्ण के भगवान होते हैं। सबको याद रखना है क्योंकि और बहुत गहराई में मैं आपको लेकर जाऊंगा, बहुत बिल्कुल अंदर कुछ लोग को कल सुबह निकालना पड़ेगा बाहर। तो सबसे पहले यह तो क्लियर हो गया कि भगवान अवतार लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं। अब यह क्लियर करते हैं कि कौन से युग में कौन से रंग के भगवान का अवतार होता है। सतयुग में सफेद, त्रेता युग में लाल, द्वापर युग में हरा और कलयुग में श्याम। तो जैसे हम इतिहास को खोलकर देखें तो पिछले सतयुग में भगवान का अवतार हुआ हंस अवतार, और हंस का रंग कौन सा होता है? सफेद। इसलिए परफेक्ट जैसे शास्त्र में कहा था वैसे आ गया। और ये भी वर्णन है कब हंस अवतार का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जब धर्म में उलझ गए अर्थात कंफ्यूज हो गए तो उसका उत्तर देने के लिए भगवान हंस का अवतार हुआ, तो सफेद वर्णन। त्रेता युग में भगवान का यज्ञ के रूप में अवतार हुआ, तो यज्ञ कैसा होता है? लाल। ये भी हो गया। द्वापर युग में भगवान का कौन सा अवतार हुआ? नहीं नहीं, रंग नहीं, कौन से भगवान ने जन्म लिया अवतार हुआ द्वापर युग में? कौन है? राम बोलने वाला कौन है? अरे इतना सोच क्यों रहे हो? द्वापर युग में कौन भगवान आए थे? हाँ, कृष्ण आए थे। ये कलयुग चल रहा है, इसके पहले के युग का नाम है द्वापर युग, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए थे। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए, और कलयुग में कौन आए किसी को नहीं पता है। कलयुग में आए हैं आज से 523 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। देखिए बहुत गहरी बात, किसी को भी यह चीज नहीं मालूम है, और गीता और शास्त्र से मैं यह बात बोलने जा रहा हूं, बहुत गहरी बात है। और प्राय भक्त समाज में भी, भक्त में भी बहुत कम लोग भगवान के अवतार का इस तत्व को जानते हैं। और इसके बाद वाले श्लोक में ही भगवान कहते हैं, ये भगवद गीता के चौथे अध्याय का कौन सा श्लोक था? आठवां श्लोक था। तो चौथे अध्याय के आठवें श्लोक के बाद नौवें श्लोक में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म के बारे में कोई तत्व से जान लेता है तो फिर से वह इस माता के गर्भ में, इस दुखालय जगत में वापस नहीं आता है, अर्थात वो मेरे धाम को प्राप्त कर रहा है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के अवतार, भगवान के जन्म और भगवान के कर्म को समझना होगा। तो चारों युगों में भगवान का अवतार हो चुका है। सतयुग में हंस अवतार के रूप में, त्रेता युग में यज्ञ अवतार के रूप में, द्वापर युग में कृष्ण, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु। कौन? यस, चलो नाम तो सबको याद है, याद हुआ चैतन्य महाप्रभु। अब कई लोगों का प्रश्न होगा, ये कैसे भगवान हो सकते? प्रमाण हमारे पास एक नहीं, 1000 प्रमाण है, आप टेंशन मत लीजिए, ये पूरी रात निकल सकती है प्रमाण देने। तो द्वापर युग में कृष्ण आए। अब कंफ्यूजन क्या है? शास्त्र में कहा गया है चारों युग के चार वर्ण होते हैं। सतयुग के सफेद, तो हंस अवतार सफेद हुए। त्रेता युग के रक्त, तो यज्ञ अवतार लाल हुए। परंतु द्वापर युग के का रंग कौन सा है? हरा। परंतु भगवान का रंग, कृष्ण का रंग कैसा है? ये तो कंफ्यूजन है। शास्त्र में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि द्वापर युग में शुक पत्राव अर्थात भगवान नीले रंग के आते हैं, परंतु हम देख रहे हैं कि कृष्ण का स्वरूप तो श्याम वर्ण का है। तो कृष्ण भगवान नहीं है या वहां पर जो लिखा है वह गलत है? ऐसा क्यों? अच्छा, अब कलयुग में यदि चले तो कलयुग में भगवान का रंग कौन से वर्ण का है? श्याम वर्ण का। और कलयुग में हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं, उनका रंग गौर वर्ण है, सफेद रंग के हैं, तो ये भी कंफ्यूजन है। तो ये क्या है? इसका उत्तर आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से दिया है कि भगवान का युगा होता है। युग में एक बार भगवान जो धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं, वे युग में एक बार होता है। परंतु ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक बार स्वयं आते हैं। अब आप देखिए, अवतार और अवतारी में क्या भेद है। भगवान यहां पर जब साधुओं की रक्षा करनी होती है, दुष्टों का विनाश करना होता है, तो भगवान से एक अवतार प्रकट होता है। भगवान वहीं पर बैठते हैं, भगवान अपने धाम में ही रहते हैं, पर उनसे एक एक्सपांशन, एक अवतार प्रकट होता है। हमने रामानंद सागर और उसमें देखा होगा, भगवान विष्णु से राम आए, नरसिंह आए, वराह आए। तो भगवान अपने धाम में रहते हैं, स्वयं भगवान। अब देखिए, स्वयं भगवान और अवतार में क्या अंतर है? स्वयं भगवान अपने देह से, अपने स्वरूप से, अपने धाम में रहते हैं, साधुओं की रक्षा करने के लिए युग 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 में वे अवतार लेते हैं, अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 युग होते, चतुर्युग होते हैं, 1000 युग होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 युग होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 भगवान 1000 अवतार लेते हैं। परंतु उस 1000 अवतारों में एक बार भगवान स्वयं आते हैं, अपने अवतार को नहीं भेजते हैं, वे स्वयं आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दृष्टांत के तौर पर, कोई बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, और उसकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही है। तो यदि मान लीजिए दिल्ली की फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हो गई, तो वह सेठ क्या करेगा? वहां स्वयं नहीं जाता है, अपने आदमी को भेज देता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को। जैसे कोई बहुत बड़ा बिल्डर है और बहुत बहुत बिल्डिंग बनाता है, तो आपने देखा होगा, कभी भी आप फ्लैट लेते हो, खरीदते हो, तो उसका एग्रीमेंट करने के लिए बांद्रा कोर्ट में जाना पड़ता है, और जो बेचने वाला है उसको साइन करना पड़ता है, और जो लेने वाला है उसको साइन करना पड़ता है, और उसमें भी वो कोर्ट वाले जब बुलाते हैं तभी जाना पड़ता है। तो वैसे तो उस बिल्डर के हजारों फ्लैट होते हैं, तो क्या वो तो उसका जीवन तो साइन करने में ही निकल जाएगा, वे धंधा ही नहीं कर पाएगा। तब वो बिल्डर क्या करता है? पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे देता है, किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा कर देता है। इसलिए बिल्डर तो अपनी जगह पर, अपने घर पर होता है, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वह जाकर साइन करके आता है, क्योंकि उसके पास पूरा पावर होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान अपने धाम में बैठते हैं, और संसार में कुछ करना होता है तो प्रत्येक युग में अपने अवतार को भेज देते हैं, जैसे जैसी आवश्यकता वैसे आदमी को भेजते हैं। बिल्डर जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग में कुछ टूट गया है तो कोई कड़िए को भेज देंगे, साइन करने के लिए किसी को भेज देंगे, प्लान लेना है तो आर्किटेक्ट को भेज देंगे, जैसे जैसे काम वैसे आदमी को भेजेंगे। तो भगवान भी अपने धाम में बैठे बैठे जैसे जैसा इस पृथ्वी पर काम है वैसे वैसे अवतार को भेजते हैं। अब हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया, तो उसको मारने के लिए भगवान राम काफी नहीं थे, क्योंकि उसने मांगा था कि मैं नर से न मरूं, अब क्या किया जाए? तो उसके लिए साक्षात नरसिंह देव आए, नरसिंह देव को भेजे। तो इस प्रकार से भगवान जैसे जैसे यहां पर जरूरत है वैसे वैसे अवतार को भेजते हैं। तो 1000 जब अवतार होता है तो 1000 में से एक बार भगवान स्वयं आते हैं, अपने आदमी को नहीं भेजते हैं, अर्थात अपने अवतार को नहीं भेजते हैं, भगवान स्वयं इस धराधाम पर उतरते हैं। तो ये जो रंग गिनाए गए हैं सतयुग में सफेद, त्रेता में लाल, द्वापर में नीला और कलयुग में श्याम, ये सब भगवान के अवतारों का रंग है। परंतु पिछले द्वापर युग में, जो अभी द्वापर युग गया, ये कलयुग चल रहा है, पिछले द्वापर युग में भगवान का अवतार नहीं आया। क्योंकि भगवान का अवतार आता तो वे ग्रीन रंग का होता, हरे रंग का होता। इसका अर्थ है कि पिछले द्वापर युग में भगवान का अवतार नहीं आया, साक्षात भगवान आए। बात समझ में आ रही है? पिछले द्वापर युग में भगवान ने अपने आदमी को नहीं भेजा, अवतार को नहीं भेजा, वे साक्षात आए। इसलिए पिछले द्वापर युग में, इसलिए बहुत लोगों का प्रश्न अभी क्लियर हो जाएगा कि हम कृष्ण को ही क्यों मानते हैं, कृष्ण की भक्ति राम की क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि कृष्ण साक्षात भगवान है और राम कृष्ण से प्रकट होते हैं। तो कृष्ण से जो प्रकट होते हैं वह भी भगवान ही माने जाते हैं, परंतु स्वरूपगत साक्षात भगवान यदि कोई है तो कृष्ण। तो पिछले द्वापर युग में साक्षात कृष्ण आए, इसलिए यह रंग भेद हुआ। और उसी प्रकार इस कलयुग में भी शास्त्र में लिखा गया है कि जिस द्वापर युग में साक्षात बजेंद्र नंदन कृष्ण आते हैं, उसके बाद वाले बिल्कुल कलयुग में भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही आते हैं, उनके अवतार को नहीं भेजते हैं। इसलिए आप देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं। इस हम जिस युग में जी रहे हैं, इस युग को सुवर्ण युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि और सब युगों में भगवान के अवतार आते हैं, परंतु इस युग में भगवान का अवतार नहीं, साक्षात भगवान आए हैं। पिछले द्वापर युग में साक्षात भगवान आए हैं और इस युग में भी साक्षात भगवान अवतरित हुए हैं। और इसके एक नहीं हजारों प्रमाण हैं, और एक प्रमाण श्रीमद् भागवतम में है। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में जब नंद बाबा कृष्ण और बलदेव जी का नामकरण करना चाहते थे और वसुदेव जी ने गर्गाचार्य को भेजा था कि कृष्ण और बलदेव का नामकरण करके आओ, तो वसुदेव जी ने जब कहा कि आप हमारे इन दोनों पुत्रों का नामकरण कीजिए, तब गर्गाचार्य ने कहा था कि आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृणतो अनुयुगम तनु। गर्गाचार्य ने वसुदेव जी से कहा कि हे वसुदेव जी, आपका ये जो बालक है, सबसे पहले गर्गाचार्य ने बड़े बालक का नाम रख दिया, इसका नाम बलदेव है, संकर्षण है, राम है। कृष्ण की जब बारी आई, कृष्ण का जब टर्न आया, तो गर्गाचार्य ने कहा कि आसन वर्णाश्रयो यस्य गृणतो अनुयुगम तनु। हे वसुदेव, हे नंद बाबा, आपका ये छोटा लड़का, आपका ये छोटा बालक अलग अलग युगों में अलग अलग तनु, तनु का अर्थ है शरीर, अलग अलग युगों में अलग अलग शरीर धारण करता है और अलग अलग शरीर के अलग अलग रंग होते हैं। तब नंद बाबा ने पूछा, अच्छा ये अलग अलग युगों में अलग अलग रंग होते हैं, बताओ कौन से होते हैं। तब गर्गाचार्य कहते हैं, शुक्लो रक्त तथा पित इदानीं कृष्ण तामगत। ये सतयुग में शुक्ल सफेद रंग में जन्म लिया था और त्रेता में रक्त रंग वर्ण से जन्म लिया था, परंतु इस बार वे कृष्ण तामगत, वे हरा न होते हुए कृष्ण ताम अर्थात श्याम वर्ण का हुआ। इसका अर्थ है गर्गाचार्य जी जानते थे कि ये साक्षात भगवान है, परंतु वसुदेव जी का वात्सल्य टूट न जाए इसलिए वे कोडवर्ड में कह दिए, चाहे उसे समझना है तो समझ, कह दिया कि ये साक्षात कृष्ण है। अच्छा, तो द्वापर युग में जो भगवान आए वे साक्षात कृष्ण है, तो कलयुग में आए वे साक्षात कृष्ण कैसे हो सकते हैं? तो वहां पर गर्गाचार्य ने कहा था कि इदानीं कृष्ण तामगत तथा पित। तो जहां पर तथा लगता है वहां पर यथा लगना ही चाहिए। तो यथा कृष्ण ताम गत इसने यहाँ पर द्वापर में जैसे कृष्ण अर्थात द्वापर में जैसे श्याम वर्ण धारण किया वैसे ही कलयुग में यह पीत वर्ण धारण करेगा। इसलिए द्वापर में यह जैसे साक्षात वजेंद्र नंदन साक्षात भगवान के रूप में स्वयं आए वैसे कलयुग में भी वे साक्षात कृष्ण ही अवतार लेंगे। इसका अर्थ यह तो भक्तों द्वापर युग में और इस कलयुग में 523 वर्ष पूर्व जो चैतन्य महाप्रभु आए वे अवतारी नहीं है वे अवतार नहीं है वे साक्षात अवतारी है वे साक्षात बजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण आए कलयुग में भी वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए। तो प्रश्न यह होता है कि कृष्ण का रंग तो श्याम है और चैतन्य महाप्रभु तो गौर वर्ण के हैं पीले रंग के हैं तप्त कांचन तो ऐसा कैसे। तो भक्तों कलयुग में जब भगवान श्री कृष्ण आए तो राधा रानी का भाव लेकर आए श्रीमती राधा रानी का भाव को स्वीकार करके आए और उसमें भी बहुत बड़े कारण है। इस कलयुग में साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए इसके कारण हम आपको एक दिवसीय यात्रा में जाने वाले हैं वहां पर सुनाएंगे कि भगवान ने ऐसा अवतार क्यों लिया। फिर भी संक्षिप्त में बता देता हूं श्री राधाया प्रणय महिमा की दृश्योन्मान येवा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि राधा रानी ये राधा मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार है। ब्रज की गोपियां और उसमें भी श्रीमती राधा रानी मेरे लिए पूरा जीवन त्यागने को तैयार है। तो भगवान के मन में ये प्रश्न उठा कि ऐसी मेरे लिए कौन सी वस्तु है जिससे संसार के लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं इतना प्रेम करते हैं कि समाज में जो रिश्ता होता है वो छोड़ देते हैं बाघ मुंडन करा के जंगल में भटकने भटक भटकते रहते हैं और नित्य निरंतर मेरे नाम का जप करते रहते हैं यह लोगों को मेरी भक्ति करने में क्या आनंद मिलता है। भगवान को लोभ हो गया क्योंकि जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो कृष्ण से भी ज्यादा उस भक्त को आनंद आता है। तो कृष्ण ने देखा कि मुझसे भी ज्यादा ये राधा खुश है मुझसे ज्यादा मेरी जो भक्ता है मेरे भक्त हैं वो खुश हैं। तो मेरी भक्ति में ऐसा कौन सा आनंद है जिससे ये लोग मेरे पीछे पागल है। एक लड़की या स्त्री कितनी भी सुंदर हो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो अपनी सुंदरता का वे स्वयं लाभ नहीं ले सकती। कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो तो वे स्वयं क्या करेगा सुंदर होते हुए भी सुंदरता का लाभ और रस वे स्वयं नहीं ले सकता है दूसरे लोग भले ले सकते। तो कृष्ण सुंदर है और कृष्ण की सुंदरता का लाभ उनके भक्त लोग ले रहे हैं और भक्त को देखकर भगवान को मोह हो गया कि मैं भी यह लाभ लेना चाहता हूं कि ये लोग मेरी भक्ति करके कितना आनंद लेते। तो भगवान ने अपनी भक्ति का लाभ लेने के लिए भगवान ने सोचा कि अब मुझे मेरी ही भक्ति करनी है और देखना है उसमें कितना आनंद आता है। तो भगवान को अपनी भक्ति करने के लिए कुछ भाव भी चाहिए भाव के बिना भक्ति नहीं हो सकती है। तब भगवान ने सोचा कि इस संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है जिसका भाव लेकर मैं कलयुग में प्रकट होऊंगा जन्म लूंगा ढूंढने लगे। और जब भगवान ने ढूंढा तो इस संसार में सर्वोच्च भक्ता भगवान की सबसे बड़ी प्रेमिका और प्रिय एकमात्र श्रीमती राधा रानी मिली। तो तब कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव को चुरा लिए। भाव का जानते हैं हृदय में जो भाव होता है भगवान के प्रति उस भाव को ही ले लिए। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि हमारे कृष्ण चोर है और चोरी करना कभी नहीं भूलते हैं। कलयुग में भी आए तो बिना चोरी करते हुए नहीं आए आए तो राधा रानी का भाव को चुरा कर आए। तो आए श्रीमती राधा रानी के भाव को चुरा कर और भक्तों जैसा जैसा भाव होता है वैसा वैसा शरीर का रंग होता है, जैसा भाव होता है वैसा शरीर का रंग होता है। आप कहोगे ऐसा कैसे? तो आप देखो कि आप यदि शांत बैठे हो, कोई टेंशन नहीं है, तो आपके चेहरे पर हंसी होगी, आप सुंदर दिखोगे, श्वेत दिखोगे, सफेद दिखोगे। परंतु मान लीजिए रास्ते से जा रहे हो और किसी ने गाली दे दी तो रंग कैसा हो जाएगा? ये कान बिल्कुल लाल हो जाएगा, मुंह लाल, अंदर भाव बदल गया तो रंग बदल गया। तो राधा रानी का जो भाव है भगवान श्री कृष्ण के प्रति उन्नत उज्ज्वल भाव है, और उन्नत उज्ज्वल भाव होने के कारण उनका रंग भी उज्ज्वल है, सफेद है। तो जब श्याम श्याम रंग वाले कृष्ण ने राधा रानी का भाव ले लिया तो श्याम कृष्ण का रंग गौर हो गया, राधा रानी के समान हो गया। इसलिए कलयुग में जो भगवान जन्म लिए अवतरित हुए वो भगवान और कोई नहीं, कृष्ण और राधा का मिलित स्वरूप है। कृष्ण का शरीर है और राधा का भाव है। कृष्ण और राधा जब आपस में मिले तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, साक्षात कृष्ण राधा रानी का भाव को लेकर कलयुग में प्रकट हुए। तो ये है चैतन्य महाप्रभु, और उस चैतन्य महाप्रभु को गौरांग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका रंग गौर है, पीला। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में अवतरित हुए, जन्म लिए। युगो युगो में युगा अवतार होता है, युग अवतार होता है, परंतु भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में अर्थात 1000 युग में एक बार भगवान स्वयं आते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार द्वापर युग में आए और इस कलयुग में भी आए, भगवान आए और जीव पर कृपा किए। हम सब भक्तों का बहुत सौभाग्य है कि हम उस भगवान की चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हैं। भक्तों यह सत्य बात है, यदि चैतन्य महाप्रभु आज से 523 वर्ष पूर्व इस कलयुग में नहीं आते तो आज कृष्ण को कोई नहीं जानता था। भक्ति रूपी धारा लुप्त हो चुकी थी। आप 523 वर्ष पीछे चले जाइए, भक्ति का नामो निशान नहीं था। हम कथा सुनाएंगे, आप सब यात्रा में आओगे वहां पर यही कथा होगी कि उस समय हमारे भारत वर्ष की दुनिया की क्या स्थिति थी। सब लोग वेद वेदांत को छोड़ चुके थे और चारों पाप में डूबे हुए थे। कैसी स्थिति थी? एक भाई अपने भाई को काट कर मार कर खा जाता था, ऐसी भीषण स्थिति। शास्त्र को भूल चुके, भगवान को भूल चुके, और ऐसी स्थिति में साक्षात भगवान बजेंद्र नंदन राधा रानी के भाव को लेकर भक्त बनकर भगवान इस धाम में आए। भक्त भगवान भक्त बनकर आए। अब भगवान सुअर बन सकते हैं, केशव धीता सुकर रूपा, भगवान सुअर बन सकते हैं, भगवान नरसिंह बन सकते हैं, तो क्या भगवान भक्त नहीं बन सकते हैं? भगवान भक्त के रूप में आए और इस संसार में भक्ति करके लोगों को सिखाए कि किस प्रकार कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। आपने आचरित प्रभु जीवे सिखाए। चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने के बहुत कारण हैं, और उनमें से एक कारण यह भी है कि भगवान ने अपने धाम में बैठकर सोचा कि सतयुग में मैं अवतार लिया, उपदेश देकर आया, फिर भी कुछ काम नहीं हुआ। फिर त्रेता युग में राम बनकर गया और सबको कर्तव्य का ज्ञान दिया, फिर भी लोग नहीं समझे। तब द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आए और बहुत बड़ा भगवत गीता रूपी उपदेश दिया अर्जुन को। उपदेश देकर अपने धाम में वापस आ गए और ऊपर जाकर देखा तो उस गीता को बिल्कुल, यदि किसी के घर पर भी है तो मंदिर के ऊपर रखी हुई है, कोई पढ़ता नहीं है। भगवान आए थे, गीता देकर चले गए, और यदि कोई इस गीता को पढ़े तो उसका उद्धार हो सकता है। परंतु भगवान ने ऊपर बैठकर देखा कि गीता को कोई कोई जानता ही नहीं तो पढ़ेगा कैसे, और जो लोग जानते हैं वे पोथी में बिल्कुल पैक करके रखे हैं। कुछ लोग तो सील भी ये गीता में देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मेरे पहले किसी ने खोली होगी, इतनी एकदम परफेक्ट स्थिति टाइट है, ये खुल भी नहीं रहा है, खोलेंगे तो बंद हो जाता है। भगवान ने देखा कि संसार के लोग मैं गीता देखकर गया, गीता देखकर गया, इतना सुंदर ज्ञान देखकर गया, फिर भी लोग इसे स्वीकार नहीं किए। तब भगवान ने सोचा कि ये लोग उपदेश से स्वीकार करने वाले नहीं है। आपने देखा कोई व्यक्ति छोटा सा बालक नर्सरी में पढ़ता है और टीचर बोर्ड पर लिखती है कि ए फॉर एप्पल, अपनी स्लेट में ए लिखिए, तो वो बालक मूड की तरह बैठे रहते हैं। तब टीचर दूसरी बार लिखती है ए फॉर एप्पल, ए लिखो सब लोग, फिर भी वो बालक नहीं समझ पाते, नहीं लिखते हैं। दो तीन चार बार जब वो टीचर कहती है और बालक नहीं लिख पाते हैं, तब टीचर क्या करती है बताइए, क्या करती है? नहीं मारती नहीं वो टीचर, हमारी गोपाल गार्डन की टीचर मारती नहीं है। क्या करती है? ठीक है कोई टीचर मारती होगी, क्रोधित स्वभाव होगा उसका, लेकिन जो असली टीचर है वो क्या करेगी? वे बालक का हाथ पकड़ेगी और हाथ पकड़कर ए इस प्रकार से लिखा है। ठीक उसी प्रकार भगवान ने उपदेश दिया, ज्ञान दिया, फिर भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तब भगवान ने सोचा कि जब तक मैं करके नहीं दिखाऊंगा, जब तक मैं भक्ति करके नहीं दिखाऊंगा, तब तक ये लोग समझेंगे नहीं। इसलिए भगवान भक्त बनकर इस धरा धाम पर आए, और किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए, भगवान के सामने कैसे खड़े रहना चाहिए, कैसे नाचना चाहिए, कैसे गाना चाहिए, अपने आचरण से अपनी आचरित प्रभु जीवर सिखाए, अपने आचरण से जगत को सिखाए कि किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। भक्तों हम जो भक्ति कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में भक्ति कर रहे हैं, इसलिए हम गौड़ीय भक्त कहे जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा है कि साक्षात भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, लाखों लाखों लक्ष्मी जिनकी सेवा करती हैं, वे भगवान भक्त बनकर आए और संन्यास ग्रहण किए। क्या जरूरत है भगवान को संन्यास ग्रहण करने? परंतु संन्यास कृच्छत शांत निष्ठा शांति परायण, संन्यास ग्रहण। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण, कृष्ण साक्षात भगवान है और चैतन्य महाप्रभु भी साक्षात कृष्ण है, अवतार अवतार नहीं है, अवतारी है। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, और चैतन्य महाप्रभु ने जो उपदेश दिए हैं, जो आदेश दिया है, उन्हें हमारे जीवन में धारण करना चाहिए। और बहुत सुंदर सिद्धांत है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना इस संसार में कोई कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता। कोई यदि ऐसा कहे कि मैं कृष्ण की भक्ति करता हूं या करती हूं और चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानती हूं, तो उसकी भक्ति में कोई माल नहीं है। हाँ वो समाज की नजर में है ये भक्ति कर रही है, परंतु भक्ति में कोई दम नहीं है। क्योंकि भक्ति कैसी करनी चाहिए, भक्ति में क्या भाव होना चाहिए, महाप्रभु की परंपरा में आए बिना कोई समझ नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कोई कृष्ण की भक्ति कर नहीं सकता। एक बार हमारे गुरु महाराज को, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज को पूछा गया कि आपको दो ऑप्शन दिया जाए, दो विकल्प दिया जाए, आपको कृष्ण को स्वीकार करना है या चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करना है, तो किसको स्वीकार करोगे? यदि विकल्प, अब दोनों को स्वीकार करना चाहिए ऐसा नहीं है, परंतु यदि बाधित किया जाए कि दो में से एक को ही स्वीकार करो, तो किसको स्वीकार करोगे? तब हमारे गुरु महाराज ने इतना ही कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करूंगा। क्यों? क्योंकि वे करुणा वरुणालय अवतार है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा आपने तो सुना नहीं है उनके बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में, एक से एक उपकार चैतन्य महाप्रभु ने किया है। और जितने भी अवतार भगवान के हुए, उन अवतारों में जितने भी दुष्ट थे, असुर थे, उन लोगों को भगवान ने मार डाला अपने बाणों से या अपने हाथों से पिटाई करके। भगवान राम आए तो रावण, खर, दुष्यंत, दूषण, बाली इत्यादि को मार डाला। भगवान राम के सामने जितने भी आए सब लोग, क्या भगवान नहीं समझा सकते थे? परंतु भगवान ने मार डाला। कृष्ण के सामने जितने भी आए बचपन से ही, तीन दिन से ही, जैसे म्युनिसिपैलिटी ये रास्ते साफ करती है वैसे भगवान कृष्ण साफ करने लगे कंस के जितने भी असुर थे। एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना, परंतु चैतन्य महाप्रभु के सामने पापी से पापी व्यक्ति, म्लेच्छ, गाय को खाने वाला, सुअर को खाने वाला, शराब पीने वाले जितने भी लोग आए, चैतन्य महाप्रभु ने अपने गले से लगाया और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के गले से लगता वे शुद्ध भक्ति में मग्न होकर नाचने लगता। भगवान के बहुत बहुत अवतार हुए, परंतु सभी अवतारों में भगवान ने असुरों को मारा, उसको तारा नहीं, भक्त नहीं बनाया। भगवान ने असुरों को मारा परंतु उसे अपना प्रेम नहीं दे सके। मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने असुरों को, पापियों को मारा नहीं, उसे अपनी प्रेम भक्ति का दान दिया। अवतार तो बहुत हुए, इतिहास खोल कर देख लीजिए, भगवान विष्णु के करोड़ों करोड़ों अवतार हैं, परंतु सन्यास किसने लिया? किसी ने नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने जीवों के कल्याण के लिए सन्यास लिया। कहा जाता है कि उसके पास कोई कमी नहीं थी, उसकी पत्नी कोई कम नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी के समान ऐश्वर्य, साक्षात लक्ष्मी उनके घर पर थी, त्याग दिए 24 साल की आयु में। कहा जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया तो वहां पर रहने वाले हजारों लोग रोने लगे। जानते नहीं थे उस बालक को, चैतन्य महाप्रभु को जानते नहीं थे कि ये भगवान है, परंतु इतने सुंदर थे, इतनी सुंदर उनकी वाणी थी, इतना सुंदर संस्कार और विद्वत्ता थी कि उस बालक के बाल मुंडाते देखकर सब लोग रोने लगे और थरथर थरथर कांपने लगे और उसे सन्यास देने वालों को गाली देने लगे कि इसे क्यों सन्यास दे रहे हैं। तात्पर्य भाव यही है कि भगवान अपने चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के लिए सन्यास धारण कर लिए, परंतु भक्तों को कृपा दी, भक्तों को मनुष्य को ही नहीं, यहाँ तक झारखंड में रहने वाले प्राणियों को भी। महाप्रभु वर्णन है इतिहास में कि महाप्रभु जब नाचते थे तो इतना भाव उमड़ता था, इतना भाव उमड़ता था कि हाथी भी उसके साथ नाचने लगता था और शेर और सिंह भी उसके साथ नाचने लगते थे। जितने भी प्राणी अपना जन्मजात स्वभाव भूल जाते थे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के भाव में आ जाते थे। हाथी, हिरण, सिंह, शेर और खरगोश इत्यादि सब लोग एक साथ नाचने लगे। यद्यपि ये सब लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने प्राणियों के ऊपर भी कृपा की और सबको अपने प्रेम भक्ति का दान दिया। धन्य है भगवान और भगवान के भक्त। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आने वाले सभी भक्त धन्य हैं। और पुनः पुनः कहता हूं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कोई कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकता है। महाप्रभु की कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति इस कलयुग में तो असंभव है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को जानना चाहिए और उनके अनुगत्य में उन्होंने जैसे भक्ति सिखाई है वैसे भक्ति करनी चाहिए, हमारी मनमाना भक्ति नहीं। गीता में भगवान ने कहा है कि मन मना भव मद भक्तो, मन मना भव, अपना मन मुझ में लगाओ, मैं जो कहता हूं वह करो। परंतु हम क्या कहते हैं, मन माना भव, हम मनमाना करते हैं, मन मना नहीं करते। हम भक्ति करना चाहते हैं परंतु हमारी स्वतंत्रता के अनुसार, परंतु ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा है उस प्रकार से यदि भक्ति करेंगे तो निश्चित इस जन्म में कृष्ण की प्राप्ति होगी, भगवान कृष्ण मिलेंगे। और हमारे लिए और भी विशेष सौभाग्य की बात यह है कि जिस चैतन्य महाप्रभु के बारे में मैं आपको कह रहा हूं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा दिन करीब आ रहा है। वैसे तो भगवान कृपालु हैं, रोज कृपा देते हैं, परंतु एक स्वभाव है, आप देखिए कि व्यक्ति पूरा साल भर दुखी होगा, टेंशन में होगा, क्रोधित होगा, परंतु वे अपने जन्म के दिन प्रसन्न होता है, जो भी चाहो वे दे देता है। वैसे भगवान का भी स्वभाव कुछ ऐसा ही है, वैसे वे कृपालु हैं, परंतु उनका जब जन्म होता है तब तो हाथ खोलकर कृपा बांटते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वैसे तो परम कृपालु हैं, परंतु उनका जब जन्म होता है, जन्मदिन के दिन वे बहुत कृपा देते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आने वाली 11 तारीख को चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है, आविर्भाव दिन है। तो चैतन्य महाप्रभु की यदि कृपा प्राप्त करनी है तो 11 तारीख, आने वाली 11 तारीख को आप सब लोग श्री राधा गिरधारी मंदिर में आइए, चैतन्य महाप्रभु का जन्म होगा। और जैसे जन्म होता है तो बालक को स्नान कराया जाता है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक होगा।